ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली की लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल उपायों सहित पर्यावरण और वन मंजूरी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस वर्ष मॉनसून की वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना और राष्ट्रीय राजधानी के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा सुचेता कृपलानी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए MRI की सेवा 24 घंटे की गई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। श्री केजरीवाल ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत से रिहाई की मांग करते हुए ये याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत 29 अप्रैल को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगी। न्यायालय ने निदेशालय का जवाब मिलने से पहले अंतरिम रिहाई की उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। इस बीच दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान श्री केजरीवाल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए। श्री केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 28 मार्च तक निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उनकी हिरासत की अवधि 1 अप्रैल और उसके बाद 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी ने शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार किया है तो जवाब देना होगा।
सत्ता का लोभी एक व्यक्ति सत्ता के बिना छटपटा रहा है, उसको चैन नहीं आ रहा है। राजमहल में सोने की आदत है, कहां उसको जेल के कमरों में अपने कर्मों से रहना पड़ रहा है। तो उस सत्ता के लोभी को, एक भ्रष्टाचारी को, उसके भ्रष्ट आचरण की सजा मिलेगी ही, ऐसा मेरा विश्वास है।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दुर्गेश पाठक ने कहा कि कोई भी सबूत दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है।
ईडी के पास किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने दो लोगों के स्टेटमेंट पे अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, एक शरद रेड्डी जी के स्टेटमेंट पे, दूसरा आपने मंगूटा जी के स्टेटमेंट पे सीएम साहब को अरेस्ट किया। दो ऐसे लोग जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी ना किसी सबूत पे ना किसी चीज पे, उनके स्टेटमेंट पे आपने अरेस्ट कर लिया उनको, जो कि पूरी तरह से गलत है।
दिल्ली के राउस एवेन्यू अदालत ने भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को भी आज आबकारी नीति मामले में इस महीने की 23 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। के कविता की पुलिस हिरासत की 3 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली चुनाव आयोग ने अपनी स्वीप पहल के तहत आज बुराड़ी क्षेत्र में महिलाओं के लिए मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इसमें महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा मतदान संबंधी जानकारी देने के लिए वोटर गाइड बुकलेट भी वितरित की गई। दिल्ली चुनाव आयोग ने नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने और चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए राजधानी में स्वीप अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग अपने सोशल मीडिया मंचों पर भी नागरिकों को मतदान संबंधी जानकारी प्रदान कर रहा है। दिल्ली निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए 12 मई को राजधानी में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। ये दौड़ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सुबह 6 बजे शुरू होगी और 10 किलोमीटर का सफर पूरा कर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर ही संपन्न होगी। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली की लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक रिपोर्ट।
कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। श्री कुमार का मुकाबला इस लोकसभा सीट के मौजूदा भाजपा सांसद मनोज तिवारी से है। वहीं कांग्रेस ने चांदनी चौक सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, जो भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल के सामने चुनावी मैदान में है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर भाजपा के योगेंद्र चंदोलिया चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने पूर्वी दिल्ली सीट से हर्ष मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके सामने आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार हैं। वहीं नई दिल्ली सीट पर भाजपा ने बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा ने कमलजीत सहरावत को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिनके मुकाबले के लिए आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली में छठे चरण के तहत मतदान के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और मतदान 25 मई को होगा। मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के साथ साथ दिव्यांग मतदाताओं को आगामी आम चुनाव के लिए घर से ही मतपत्र का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि बूथ स्तर अधिकारी अपने क्षेत्र में इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले पात्र मतदाताओं की संख्या का पता लगाएंगे, जो घर से मतदान करने की प्राथमिकता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मतदाता जिन्होंने घर से वोट डालने के लिए आवेदन किया है, उन्हें यह सुविधा दी जाए। श्री अग्रवाल ने बताया कि बीएलओ को युवाओं के बीच उनके मतदान के अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो युवा 1 अप्रैल तक 18 वर्ष के हो गए हैं, उनके पास 26 अप्रैल तक पंजीकरण कराने और 25 मई को लोकसभा आम चुनाव में अपना वोट डालने का अवसर है। प्रवर्तन एजेंसियों ने लोकसभा के पहले चरण के चुनाव से पहले 4,650 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड नकदी जब्त की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 3,475 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई थी। आयोग ने कहा है कि चुनाव से पहले जब्त की गई कुल राशि का 45% मादक पदार्थों के रूप में जब्त किया गया है। उसने कहा है कि ये राशि विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल, व्यापक योजना और लोगों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत जब्त की गई है। इस वर्ष 1 मार्च से प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सप्ताह दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में पानी को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत को लेकर आज आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। महिला के पड़ोसी ने सामूहिक नल से पानी लेने पर उसकी चाकू घोप कर हत्या कर दी थी। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए उसे दिल्ली में जल संकट से निपटने में असमर्थ बताया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने का भी आरोप लगाया। श्री सचदेवा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन जल शुद्धिकरण क्षमता में एक इकाई भी नहीं बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को राजधानी के जखीरा फ्लाईओवर के पास से पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध शराब के 39 कार्टन जब्त किए हैं, जिनमें लगभग 1950 शराब की बोतलें थीं। शराब की तस्करी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक चार पहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल शमन उपायों सहित पर्यावरण और वन मंजूरी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का उपयोग करके देश के राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए एक ठोस आधार तैयार करना है। इसमें देश भर में पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए परियोजना मंजूरी और शमन रणनीतियों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति प्राधिकरण की प्रतिबद्धता दोहराई और वन्यजीव गलियारे, अमृत सरोवर, वृक्षारोपण अभियान और हरित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग जैसी पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वन महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने अंतर विभागीय सहयोग में सुधार करके और राजमार्ग निर्माण में हरित प्रथाओं को अपनाने की दिशा में एक ठोस प्रारूप बनाकर योजना प्रक्रिया में तेजी लाने पर बल दिया। इस साल देश में मॉनसून की वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एम रविचंद्रन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के बारे में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालांकि उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। इस अवसर पर भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि पहली जून से 30 सितंबर तक देशभर में औसतन 87 सेंटीमीटर वर्षा होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि मॉनसून सीजन के शुरुआती समय में अल नीनो की स्थिति कमजोर बनी रह सकती है। डॉ महापात्र ने कहा कि अच्छे मॉनसून से जुड़ी ला नीना की स्थिति अगस्त से सितंबर के बीच बनने की संभावना है।
दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक होने का संभावना है। जब हम सामान्य बोलते हैं वो 96% से 104% तक होता है, और 104% से जब बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज्यादा होता है तब इसको सामान्य से अधिक बोला जाता है। जो सीजनल मॉनसून रेनफॉल 2024 फर्स्ट जून से 30 सितंबर के दौरान पूरे भारतवर्ष के एवरेज को कंसिडर किया जाए तो वो 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज होने का संभावना है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए एमआरआई की सेवा 24 घंटे कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा 3 टेस्ला एमआरआई प्रणाली को पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा नवनिर्मित केंद्रीय प्रयोगशाला भी पूरी तरह शुरू हो गई है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ सुभाष गिरी ने बताया कि नई प्रयोगशाला में मशीनें पूरी तरह से आधुनिक हैं। इनकी मदद से कम समय में उच्च स्तर की जांच रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में सुनिएंगे चर्चा पेंशन प्राप्तकर्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निवारण। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे अतिथि के समक्ष पेंशन प्राप्तकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के विभिन्न तरीकों पर प्रश्न रख सकेंगे। विशेषज्ञ रहेंगे पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग के निदेशक डॉ प्रमोद कुमार सार्थक। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली की लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल उपायों सहित पर्यावरण और वन मंजूरी पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस वर्ष मॉनसून की वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा सुचेता कृपलानी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए एमआरआई की सेवा 24 घंटे की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।